की प्रस्तीश करो, दिल तेरु देना। ओ नु धन धन आखो जीवे जे ओदा जला, बादशाह मादाओ बादशाही, बादशाह मादाओ बादशाही, बादशाह मादाओ बादशाही, बादशाह मादाओ बादशाही। जिदा तख्त ते लग्या होया है, जिदा तख्त ते लग्या होया है, बादशाह मादाओ बादशाही, बादशाह मादाओ बादशाही।
खुदावन अपने खुदा के हजूर झुकें और अपने दिल दिमाग और सोच और ख्यालात को उसके सुपुर्द करें। अगर किसी किस्म की फिक्र ख्याल बोझ आपकी रूहों पर है तो खुदावन यसु मसीह के उस पैगाम को याद रखें जब उसने कहा कि हवा के परिंदों को देखो, ना वो बोते हैं ना काटते हैं, ना कोठरियां हैं उनके जमा करने के लिए, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है, लेकिन तुम्हारी कदर तो उन चिड़ियों से कहीं ज्यादा है। सो खुदावन खुदा को अपनी फिक्र दें क्योंकि वो हम सब की फिक्र करता है। आए उसके हुजूर झुकें और आज के कलाम के वसीला से हम बरकत पाने वाले बने। हम दुआ करेंगे। खुदा बाप, जब जब हम कमजोर लाचार नामीद बेसहारा होते हैं तो तेरे वादे हैं जो हम सबको खुदावन खुदा हौसला और खुदावन खुदा हमारी रहनुमाई करते हैं। खुदा बाप, आज हम सब तेरे पास आते हैं, यीशु मसीह के नाम में तुझे छूना चाहते हैं, ईमान से तुझे छूते हैं और खुदावन तू हम सबको छू, तेरा अबर यहाँ पर कसरत से एक एक जिंदगी पर छा जाए और आज का कलाम जो हम पढ़ें हम सब के लिए बरकत का बायस हो। यीशु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ मांगता हूँ, आमीन। मेरे साथ निकालें नए अहदनामा में से लूका की अंजील, उसका 8 बाप, उसकी हम 43 आयत से 48 आयत तक पढ़ेंगे। ये खुदावंद यीशु मसीह की जमीनी जिंदगी में वो नौवां मौजजा है जिस पर हम गौर करेंगे। वो मौजजात का खुदा हर वक्त वफादार और हर वक्त हम सब के लिए मौजूद है। खुदा के कलाम में यू लिखा है, और एक औरत ने जिसके 12 बरस से खून जारी था और अपना सारा माल हकीमों पर खर्च कर चुकी थी और किसी के हाथ से अच्छी ना हो सकी थी, उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ और उसी दम उसका खून बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, वो कौन है जिसने मुझे छुआ? जब सब इनकार करने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, ए साहिब, लोग तुझे दबाते और तुझ पर गिर पड़ते हैं। मगर यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ तो है, क्योंकि मैंने मालूम किया कि कुवत मुझसे निकली है। जब उस औरत ने देखा कि मैं छुप नहीं सकती तो कांपती हुई आई और उसके आगे गिर कर सब लोगों के सामने बयान किया कि मैंने किस सबब से तुझे छुआ और किस तरह उसी दम शफा पा गई। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, सलामत चली जा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। इस वाक्या में हम इस औरत को देखते हैं जो 12 बरस से इस बीमारी का शिकार है और इस बीमारी ने उसे ना सिर्फ अंदरूनी तौर पर तोड़ दिया है बल्कि इर्द गिर्द के लोगों के तानों ने, लोगों की बातों ने, लोगों का बुड़बुड़ाना उसके हौसले को हर रोज तोड़ रहा है और वो अंदर ही अंदर गम से खाए अपने आप को खाई जा रही है। ये औरत, जब हम पुराने अहदनामे का जिक्र पढ़ते हैं, खुदा के कलाम के सामने कोई शर्म नहीं, खुदा अगर कलाम में ये बातें लिखता है तो हमें इनसे शर्माने की जरूरत नहीं। पुराने अहदनामा में जब हम अहबार की किताब उसके 15 बाब को पढ़ते हैं तो वहां पर खुदावन खुदा मूसा को ये बातें कहता है कि काहिनों को ये बात लाजम है कि वो जाने, जब कोई कोड़ी कोड़ में पड़ जाता था तो उसको उसकी जिल्द को देखा जाता था कि क्या ये इसका जिस्म ठीक है, ये कोड़ है या कोई और बीमारी है। इसी तरह औरतों को जो महानावर खून जारी होता है, ये खुदा का निजाम है और इसमें औरतों को ये निजाम खुदा की तरफ से ठहराया गया है उनकी अपनी सेहत के लिए, उनकी अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए। ये खुदा का तरीका कार है। औरतों को जब महीनावर खून आता है तो पुराने अहदनामा में लिखा है कि खून आने के बाद वो औरत गुस्ल करती थी और नापाक पाक हो जाती थी। लेकिन अगर किसी औरत को मुसलसल खून आता रहता था तो वो शरीयत के मुताबिक नापाक गिनी जाती थी। शरीयत के मुताबिक वो लोगों के नजदीक नहीं आ सकती थी, लोग उसे छू नहीं सकते थे और कोई उससे तल्लक वास्ता नहीं रखता था जब तक हैज का जो खून है बंद नहीं हो जाता था। और जिस बिस्तर पर, जिस जगह पर, जिस चीज को वो छूती थी वो नापाक गिनी जाती थी। और इसलिए इस नापाक खून के बास, इस नापाकी की हालत के बास, जब खून बंद हो जाता था तो वो नहा धोकर गुसल करके शाम तक नापाक रहती थी। और जब वो मुकम्मल तौर पर खून बंद हो जाता था तो 7 दिन के बाद वो पाक ठहरती थी। 7 दिन तक वो नापाक रहती थी और उसके बाद 8वें दिन वो जाकर क्या करती थी, हैकल में कुमरियों या कबूतरों के 2 बच्चों को वो हैकल में हदिये के तौर पर गुजरानती थी। और काहिन उससे दरवाजे पर वो हदिया लेता था और फिर उसके लिए कुर्बानी चढ़ाता था। और यूं वो उस जजियान या हयान या जिसे कहते हैं महानावर खून जो आता था उस नापाकी से, नापाकी से पाक हो जाती थी। ये था हफ्ते का एक सिलसिला कि खून आया और 7 दिन तक खून जारी रहा और उसके बाद वो क्या हो जाती थी, पाक हो जाती थी, कुर्बानी चढ़ाती थी। लेकिन इस औरत को हम देखते हैं, बहनों और भाइयों जरा गौर से सुने, ये औरत 12 बरस से इस दुख को उठा रही है और उसे 12 बरस से इस नापाकी का सामना है। ये औरत जिस्मानी तौर पर बीमार है और जज्बाती तौर पर उसका एहसास, उसके जो इमोशंस है जिसे कहते हैं कि वो इमोशनली यानी कि एहसास या उसके जो ख्यालात हैं वो चकनाचूर हो चुके हैं। इर्द गिर्द के लोग, पहली बात, कोई उसे छू नहीं सकता, वो किसी के नजदीक नहीं जा सकती, वो अपने अगर खानदान में रहती है तो वो किसी को, किसी के साथ नहीं रह सकती, वो किसी के लिए खाना नहीं बना सकती, वो किसी के नजदीक नहीं जा सकती क्योंकि वो नापाक गिनी जाती थी। ये औरत 12 बरस से, 12 साल मुंह से ये बात कहनी है, बहुत लंबा अरसा है। इस औरत ने 12 बरस से ये कभी एहसास नहीं किया कि किसी दूसरे शख्स को छू सके या कोई उसके नजदीक बैठ सके। 12 बरस से वो अपने रिश्तेदारों से अलहदा है। इस औरत की हालत उन कोड़ियों की मानत थी जिनको हुक्म था कि वो शहर के बाहर रहें, और जब तक वो कोड़ी पाक साफ नहीं हो जाता था वो शहर में आ नहीं सकता था। अगर वो घर शहर में आता था तो वो घंटी बजाता था या चला चला कर कहता था नापाक नापाक, और सब उसका रास्ता छोड़ देते थे। ये औरत 12 बरस से जज्बाती तौर पर, जिस्मानी तौर पर अलहदा है, कोई भी इसके नजदीक नहीं आता और इसका दुख बहुत बड़ा है। दूसरी बात, इसने अपना तमाम रुपया पैसा तबीबों को, डॉक्टरों को, हकीमों को, अपने दौर के लोगों को दिया, खर्च किया और किसी से उसे कुछ फायदा नहीं हुआ। इस औरत की हालत पर बहुत ज्यादा तरस मुझे आ रहा है। कि इसकी हालत, वो अपना अलहदा है, अपना रुपया पैसा लोगों को, डॉक्टरों को दे चुकी है और किसी से उसे कुछ फायदा नहीं हुआ, बल्कि ज्यादा बीमारी की हालत में है। और तीसरी बात, ये यीशु के बारे में जानती है, उसने यीशु के बारे में सुन रखा है कि वो अंधों को आंखें, बहरों को कान, कोढ़ियों को पाक साफ करता है, मुर्दे जिंदा करता है, वो बदरू गिरफ्तार लोगों को आजाद करता है। और यहां तक अभी अभी उसने देखा है कि वो अजीब अजीब मौजजात और तलीम देता है, अजीब गरीब तौर पर वो काम करता है। सो वो यीशु मसीह के बारे में जानती है कि वो वाहद ऐसा हकीम है जो मुझे शिफा दे सकता है। चौथी बात, इस औरत ने अपने दिल में ये बात ठान ली है कि अगर मैं उसे छू लूंगी तो मैं शिफा पा जाऊंगी। अगर सिर्फ उसे मैं छू लूंगी, मुझे उससे बात करने की जरूरत नहीं, मुझे उसके तरफ देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी हालत में अगर मैं सिर्फ उसके पल्लू को, उसकी पोशाक के उस किनारे को छू ही लूंगी तो शिफा पा जाऊंगी। और इस औरत ने अपने दिल में ठहरा लिया है। और इस औरत के सामने जो जज्बाती तौर पर टूटी हुई है, जो जिस्मानी तौर पर बहुत ज्यादा दुख उठा चुकी है और माली तौर पर अपना रुपया पैसा दौलत सब कुछ बांट चुकी है, और रूहानी तौर पर वो मजबूत है, उसकी रूह बहुत ही मुत्तफिक है, उसका ईमान बहुत बड़ा है कि सिर्फ छू ही लूंगी यीशु को तो मैं शफा पा जाऊंगी। और पांचवी बात देखते हैं कि यीशु तक पहुंचने के लिए इस मौके पर यीशु हैकल से बाहर आया है। शागिर्द उसे कह रहे हैं, जब यीशु ने कहा कि मुझे किसी ने छुआ है, तो शागिर्दों ने कहा कि यीशु तू कैसी बात करता है, लोग तुझ पर गिर पड़ते हैं, तुझे दबा लेते हैं, इतनी ज्यादा भीड़ है और तू कहता है कि मुझे किसने छुआ। यीशु ने कहा कि मुझे किसी ने छुआ है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझ में से कुव्वत निकली। इस औरत का छूना उन तमाम दूसरे लोगों के छूने से अलग था। ये ईमान से छूने वाली औरत थी, इसने ईमान से यीशु को छुआ और ईमान से उसके पास आई। और खुदा का कलाम अब्रानियों 11 बाब उसकी 6 आयत में कहता है कि बगैर ईमान के खुदावन खुदा को पसंद आना नामुमकिन है, क्योंकि वो अपने तालबों को बदला देता है जो उसके पास ईमान से आते हैं। ये यीशु मसीह की तालब है, ये यीशु मसीह की भूखी और प्यासी और उम्मीदवार है कि मैं अगर यीशु को छू ही लूंगी तो वो मुझे शिफा देगा, मैं शिफा पा जाऊंगी, इस 12 साल के रोग से मुझे रहाई मिल जाएगी। मैं एक फिल्म देख रहा था इसी औरत के तल्लक से कि ये औरत अलहदा रहती थी, लोग इसे छूते नहीं थे, इससे बात नहीं करते थे, और ये रूहानी जिस्मानी तौर पर और माशरती तौर पर लोगों से अलहदा थी। उसने अपने दिल में ठहरा लिया कि अगर मैं यीशु को छू लूंगी तो शिफा पा जाऊंगी। और क्या हुआ, उसने यीशु को छुआ। उसके सामने बहुत सी रुकावटें थी, उसके सामने वो लोगों के तमाम मेने थे, वो बातें थी, और उसके बाद उसके सामने वो बड़ी भीड़ थी, उसके सामने वो बहुत बड़ी भीड़ थी, लेकिन उन तमाम बातों को वो गालब आती हुई, तमाम बातों पर वो गालब आती हुई क्या करती है, यीशु मसीह के पास जाती है। वो अपने रोग को, अपनी मुसीबत को, अपने दुख को उसके पास लेकर जाती है। और वो गीत मुझे याद आ रहा है जो नसमाल ने गाया था, अब यीशु के पास जाने दो, दुनिया वालों ना रोको मुझे, हाल दिल का सुनाने दो, गिरते गिरते मैं आगे बढ़ूंगी, जाके यीशु से सब कुछ कहूंगी, हाल दिल का सुनाने दो। इस औरत ने अपने दिल में ठहरा लिया था कि यीशु को छुएगी और उसने छुआ। जब हम इस औरत को देखते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम इस पर गौर करेंगे चंद लम्हों में। ये औरत शफा पा गई, कांपती हुई डरती हुई। जब यीशु मसीह ने कहा कि किसने मुझे छुआ, तो उसने आकर बयान किया कि मैंने तुझे छुआ है, मैंने तुझे छुआ है। और मेरे छूने की वजह क्या थी कि जब मैं तुझे छू लूंगी तो शफा पाऊंगी, और वो उसी दम शफा पा गई। आज इस पैगाम को मैं इस बात पर खत्म करना चाहता हूं। मुझे नहीं पता कि आप कितने सालों से बीमारी में, मुश्किल में, जज्बाती तौर पर, माशर्ती तौर पर, रूहानी तौर पर मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जैसे बहुत दफा हम ईमानदार देखने में, सुनने में आया है कि एक महीना दुआ की और यीशु मसीह की तरफ बजाय बढ़ने के हम उसकी तरफ से अपना मुंह फेर लेते हैं और दुनिया के हकीमों, डॉक्टरों के पास भागना शुरू कर देते हैं। बहुत सी बीमारियां हैं जिनका जिनका इंतजामी इंतजाम खुदा ने किया है कि डॉक्टर ठीक करें, दवाई से हो। लेकिन ये बीमारी डॉक्टरों तबीबों से नहीं, बल्कि तबीबे आजम, हकीमों के हकीम, दुनिया के फर्स्ट क्लास सर्जन यीशु मसीह के वसीला से ठीक हुई। हमारी गुनाह की बीमारी, हमारी परेशानी की बीमारी, हमारे जिंदगी के जो भी रोग हैं, अगर वो डॉक्टरों से ठीक नहीं हो रहे तो यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है। दुनिया की तमाम बातों को अलहदा करते हुए, दुनिया की तमाम सोचों को अलहदा करते हुए कि यीशु मसीह ही है जो शफा दे सकता है। दूसरी बात, इसने ठहरा लिया था, चाहे कुछ भी हो, मैं अपना रुपया पैसा तो लुटा चुकी हूं, मैं यीशु के पास जाऊंगी। हमें भी यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है, हमें यीशु मसीह को छूने की जरूरत है। वो कहता है मेरे पास आओ, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मैं तुमको आराम दूंगा। अगर आज आप पर किसी किस्म का बोझ है,